हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण रामायण के अनेक चरित्रों में प्रभु राम का चरित्र सर्वोत्कृष्ट है, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। लेकिन रामायण के प्रत्येक व्यक्तिमत्व एक अनोखे व्यक्तिमत्व हैं, और श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की जो भूमिका है उसी पर सारे व्यक्तिमत्व आधारित हैं। उनका व्यवहार, उनका चरित्र उसी मर्यादा को प्रदर्शन करने में, आदर्श स्थापन करने में लीन है। और रामायण की कथा श्री हनुमान जी के चरित्र के वर्णन के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। श्री हनुमान जी रामायण के पूर्ण कथा के एक महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व हैं, जिनके द्वारा हम दास्यता का सर्वोच्च अनुभव, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान के बिना रामायण अधूरा है, राम जी का चरित्र भी हनुमान जी के वर्णन के बिना अधूरा हो जाता है। क्योंकि दास का गौरव जब हम करते हैं तो स्वामी का गौरव अपने आप बढ़ जाता है। दास का गौरव करने से स्वामी को अपने आप आनंद भी प्राप्त होता है। कभी कभी स्वामी का गौरव न करते हुए भी केवल दास का भी गौरव करेंगे तो भी स्वामी का आनंद की वृद्धि होती है। तो ये श्री हनुमान जी, इनका जन्म जो है वो प्रभु रामचंद्र के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब दशरथ महाराज ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया और उस यज्ञ से दिव्य पुरुष निर्माण हुआ, जो आरक्त वर्ण और श्याम वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए था, उसके हाथ में एक घी का, एक क्षीर का पात्र था, और जब उस क्षीर को अलग अलग मात्रा में दशरथ राजा विभाजित कर रहे थे तो बीच में एक जोर से हवा का झोंका आया वायुदेव की तरफ से, और वो खीर का एक हिस्सा हवा में ले गया। एक जगह लिखा है कि किसी श्रेष्ठ शक्तिशाली कौवे ने एक हिस्सा वहां से छीन के वो हवा की गति से वहां से ओझल हो गया। दोनों बातें सही हैं। वायुदेव को ब्रह्मा जी को दिया हुआ वादा, दिया हुआ वचन पूर्ण करना था, और प्रभु राम के लीला में उनका अंश को सहभाग देना था। तो ये खीर का जो हिस्सा है वो उड़ते 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 दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसका नाम है हम्पी। उसमें एक पर्वत है जिसका नाम आज पड़ा हुआ है आंजनेय पर्वत। उसमें अंजनी और केसरी दो श्रेष्ठ वानर जो भगवान के भक्त थे वो निवास कर रहे थे, और अंजनी और केसरी दोनों तपस्या कर रहे थे कि उन्हें श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो जाए। ये दोनों महाबलशाली वानर थे और एकांत में बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय अपने हाथ को अंजुलि की तरह फैलाकर अंजनी माता उस पर्वत के शिखर पर विराजमान थी, और ये हवा का झोंका कहिए या कौवा कहिए, काक कहिए, वो जो खीर का हिस्सा है वो सीधे अंजनी माता के अंजुलि में डाल देता है, और उस प्रेरणा से अंजनी माता उसको ग्रहण करती है, और यथावकाश वो गर्भवती हो जाती है। फिर एक बार दिव्य तरीके से गर्भ धारणा हो जाती है, और फिर यथावकाश श्री हनुमान जी का जन्म होता है, पवन पुत्र हनुमान। वायुदेव ने अपना वचन इस प्रकार से हनुमान जी को देकर, अपने अंश को देकर प्रभु राम की लीला में सहभाग का वचन पूर्ण किया। आज भी ये स्थान हम्पी बहुत ही अद्भुत स्थान है। इस स्थान में जो पर्वतों की रचना है, जिस प्रकार की चट्टाने शिलाएं रखी गई है, किसी भी सामान्य प्रेक्षक को जो देख रहा है उसको ये अनुभूति होगी कि किसी ने इसको खेल खेल में रखे हुए हैं, किसी ने खेल खेल में इन चट्टानों को रखा हुआ है। उसको हम कितना भी अपने वाक चातुर्य से वर्णन करेंगे तो वो दृश्य आपके आंखों के सामने नहीं आ सकता है, जो वास्तव में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चट्टाने इस प्रकार से रखी गई है कि सामान्य दृष्टि से और सामान्य ज्ञान से हमको समझ में आएगा कि अभी वह गिर सकती है, लेकिन वो चट्टाने इस प्रकार से रखी गई है कि हजारों सैकड़ों साल हो गए फिर भी वो उसी जगह पर विराजमान है। तो यथावकाश हनुमान जी का जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात वायुदेव के पुत्र होने के नाते उन्हें बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है और बालक यहाँ वहाँ देखता है, आकाश में देखता है, तो उनको आकाश में सूर्य देवता उदय होते हुए नजर आते हैं। उदय होते हुए सूर्य जो होते हैं वो नारंगी रंग के होते हैं, स्वर्ण प्रकाश, जैसे हम गेहुआ वस्त्र भी कह सकते हैं या नारंग का वस्त्र भी रंग भी कह सकते हैं, बहुत कोमल होता है रंग वो। तो दूर से उन्हें एक बड़े सुंदर स्वादिष्ट फल की तरह लगे वो, और वायुपुत्र होने के नाते बालकपन से ही जन्म होते ही उन्हें वो आकाश में उड़ने की कला थी, तो सीधे आकाश में उड़ गए, सीधे आकाश में उड़ गए उस सूर्यदेव की ओर, जिसको फल समझकर वो खाने की अपेक्षा कर रहे थे और तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। सूर्यदेव दुखी हो गए क्योंकि वो हनुमान जी जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ है, वायुदेव के पुत्र होने के नाते उनका गौरव क्या है, शक्ति क्या है, सब कुछ सूर्यदेव जानते थे। भयभीत होकर सूर्यदेव ने इंद्र को पुकारा और उसी समय इंद्र अपने ऐरावत को लेकर हाथ में वज्र लेकर उसके मार्ग में आए। जैसे ही उड़ते हुए हनुमान जी ने एक और सांवले रंग का काले रंग का हाथी देखा तो उनको लगा कि और कोई दूसरा फल जो मेरे निकट है, अभी अभी जो दूसरा फल सूर्य की ओर में जा रहा था वो दूर है, तो वो हनुमान जी सूर्य की दिशा छोड़कर ऐरावत की दिशा में आए और ऐरावत को खाने के लिए आगे बढ़े, तो इंद्र ने समयोचित रूप में उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया। अभी हम देख सकते हैं छोटा सा बालक है, नवजात शिशु है, आकाश में उड़ रहा है, उसके ऊपर इंद्र ने अपने सबसे सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ अपने शस्त्र का अस्त्र का उस पर उपयोग किया और वो अस्त्र जो वज्र था वो हनुमान जी के हनु इस जगह पर आघात हुआ उसका, और आघात होते ही बालक बेहोश हो गया और सीधे आकर जमीन पर गिर गया। जैसे जमीन पर गिरता है तो वायुदेव आकर उसको तुरंत गोद में लेते हैं। वायुदेव को बड़ा क्रोध आता है कि मेरे नवजात शिशु को, निष्पाप बालक को, जो अनजान रूप में सूर्य की ओर फल समझ के जा रहा था, उसे इंद्र ने इतने कठोरता से, इतनी दुष्टता से उसको वज्राघात किया है जो किसी भयंकर राक्षस को मारने के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। तो क्रोधित होकर वायुदेव उसको गोद में लेकर बैठ जाते हैं अपने बेहोश बेशुद्ध बालक को। सब वानर समाज एकत्र होता है, सब लोग रुदन करते हैं, क्रोध करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, और वायुदेव इस इंद्र की इस उद्दंडता के दंड के रूप में पूरे विश्व की हवा रोक देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के वायु हैं, हमारे वक्षस्थल में 5 प्रकार के वायु घूमते रहते हैं, फिर हमारे मज्जा में वायु घूमते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी वायु घूमता है, हमारे जोड़ों में वायु घूमता है, और जो भी हमारी गतिविधि होती है वो सारी गतिविधि वायु के प्रभाव से, वायु के अलग अलग सूक्ष्म और स्थूल रूप के प्रभाव से पूरा विश्व चलता है, हमारा शरीर चलता है, हमारे हाथ पांव, हमारा मस्तिष्क, हमारा मेरुरज्जा, वो सब वायु के प्रभाव से चलता है। जितनी भी गति आपको इस विश्व में नज़र आती है वो सब वायु के अलग अलग प्रकार से होती हुई नज़र आती है और वही उसका सत्य है। तो जैसे ही वायुदेव ने वायु को रोक लिया तो सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी जानवर, सभी प्राणी की गति ही समाप्त हो गई। जैसे अगर ऐसे हाथ रखा हुआ है तो वैसे ही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसके लिए वायु की गति का आवश्यकता होती है। तो मानो सब लोग स्तंभित हो गए, भाव विभोर होकर नहीं, वायु के प्रभाव से सांस रुकने लगी, प्राणवायु रुकने लगा, जीवन समाप्त होने जैसा लगने लगा, हाहाकार मच गया, सब लोग इंद्र की ओर, ब्रह्मा जी की ओर पुकारने लगे, त्राही त्राही माम त्राही माम। उस समय सारे देवता जहां पर वायुदेव हनुमान जी को लेकर विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, हनुमान जी को लेकर बैठे हुए, वहां सब लोग एकत्र होते हैं और हृदय से वायुदेव की क्षमा मांगते हैं। उनकी क्षमा याचना से फिर वायुदेव शांत हो जाते हैं और फिर वायु का संचालन विश्व में पूरा प्रसारित करते हैं। उस समय वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताएं उस बालक को बहुत सुंदर वरदान देते हैं। सर्वप्रथम उसे जल छिड़क कर शुद्धि में लाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जख्म जो है यहाँ पर वो भी भर जाती है, लेकिन वहाँ पर छेद बना रहता है, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया है, जिनकी हनु का छेद किया गया है, इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनकी जो हनु है वो भी ऐसे दो विभाग में हम देखते हैं। तो उनको शुद्धि में लाने के पश्चात सारे देवता उन पर वरदानों का वर्षाव करते हैं। हर देवता उनके पास तो सर्वश्रेष्ठ वरदान था वो हनुमान को देते, बल शक्ति बुद्धि सिद्धि ज्ञान हर प्रकार का वरदान उनको दे देते हैं। उसमें एक वरदान ये था कि सूर्यदेव हनुमान जी को ज्ञान देंगे। तो हनुमान जी इतने सभी देवताओं से वरदानों को प्राप्त करके इतने बलवान हो गए, सूक्ष्म दृष्टि से स्थूल दृष्टि से हर दृष्टि से हर मात्रा में हर प्रकार से वो श्रेष्ठ बलवान ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष बन गए। अभी उनको फिर भी सूर्यदेव का वरदान था ही ज्ञान प्राप्त कराने का। तो वो सूर्यदेव के वहाँ पास पहुँचे और कहा कि आपने कहा था हमें ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक जगह रुक नहीं सकता, मैं दिव्य रथ में बैठकर दिव्य घोड़ों को चलाता हूँ और समय के अनुसार मुझे स्थिर गति को प्राप्त होते हुए चलना होता है। तो आपको अगर सीखना है मुझसे तो आप मेरे रथ में बैठ सकते हो और जब मैं अपना कार्य कर रहा हूँ मैं आपको ज्ञान देते रहूँगा। तो हनुमान जी इतने विशिष्ट और नम्र व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जब किसी गुरु से ज्ञान लेना होता है तो उनके बाजू में उनके ही स्थान पर उनके ही स्तर पर बैठ के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए उनके सामने आसन होना चाहिए, स्थिति उनके सामने होनी चाहिए और उनसे नीचे होनी चाहिए, और नम्रता से नम्र भाव से इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो वो ज्ञान आगे हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगा और आगे जाकर काम भी आएगा। इसलिए मैं आपके रथ के सामने उल्टी दिशा में दौड़ूंगा, आप अपने रथ पर अपना नित्य क्रम करते हुए चलते रहिए, आपका रथ समय के गति के अनुसार चलता रहेगा स्थिर गति से, और मैं उतनी ही गति से उल्टा दौड़ते रहूंगा आपके सामने मुख करते हुए, आप मुझे देखते रहेंगे मैं आपको देखते रहूंगा, मैं जमीन के सर पर रहूंगा आप रथ पे रहेंगे। तो सारी जो स्थितियां हैं इसमें परिपूर्ण हो जाती हैं एक विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम सोच सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शिष्य को एक मुमुक्षु विद्यार्थी को कैसी भावना रखनी चाहिए, मन की आत्मा की चेतना कैसी होनी चाहिए, इसका एक प्रमाण हनुमान जी ने यहाँ पर दिया है। और जितना भी ज्ञान वेदों का हनुमान जी ने प्राप्त किया है ऐसे उल्टी दिशा में दौड़ते हुए प्राप्त किया है, उसमें कोई खाने पीने का अवकाश कोई निद्रा का अवकाश नहीं था। जितना समय सूर्यदेव स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं हनुमान जी स्थिर गति से उल्टे दौड़ रहे हैं उनकी तरफ मुंह करके और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसे कहते हैं विद्यार्थी। गुरु तो अपना काम कर ही रहे हैं लेकिन विद्यार्थी की जो मुमुक्षु अवस्था है वो इतनी श्रेष्ठ है, उसका भाव इतना श्रेष्ठ है, उसकी क्रिया उस भाव के अनुसार इतनी श्रेष्ठ है कि दिव्य ज्ञान हनुमान जी को प्राप्त हुआ। और इस दिव्य ज्ञान की वजह से जो उनका व्यवहार उनकी बुद्धि का अनुभव हम रामायण में करते हैं उसका परिणाम तो हम देख ही सकते हैं कि कितने श्रेष्ठ विद्यार्थी हनुमान जी थे। उसके बाद बालक तो थे ही, वो बालक रूप में उन्हें इतने सारे वरदान मिले थोड़ी उद्दंडता निर्माण हो गई उनके अंदर, थोड़ी सी चरारत करना शुरू किया उन्होंने। फिर इतना बल था कि वो पहाड़ों को उठा सकते थे, तो पहाड़ मतलब जैसे गेंद की तरह हो गए उनके लिए। तो वो जा जाकर पहाड़ों को उखाड़ते, पहाड़ों को यहाँ से वहाँ करते, उधर यहाँ से वहाँ रखते, और सब जो स्थिरता थी पृथ्वी पर अपने अपने जगहों की पहाड़ों की पेड़ों की सब जगह उनको ने उधम मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी दृष्टि ऋषियों पर पड़ी, जहाँ ऋषि बैठे हुए हैं उनको उठाकर उल्टा कर देते थे, जहाँ जल में कहीं वो भजन कर रहे हैं और जल में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दे रहे हैं गायत्री जप कर रहे हैं, तो वहाँ जाके उनको जल के नीचे जाकर पैर से उठाकर उल्टा पानी में फेंक देते थे, कभी मुँह में पिचकारी लगाते थे, अचानक सामने आकर जल के नीचे से उनके मुंह के सामने उनको पिचकारी मारते थे, और हर प्रकार का आतंक, हर प्रकार का त्रास उन्होंने सब ऋषि मुनियों को देना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत देर सबने सहन कर लिया, बाद में जब आतंक बढ़ गया, कष्ट बढ़ गया, पीड़ा बढ़ गई, अस्थिरता बढ़ गई, तो एक ऋषि ने उनको शाप दिया उनको कि आज से तुम्हारे पास जितनी सिद्धियां हैं, जितने बल हैं, जितने आशीर्वाद हैं, तो सब भूल जाओगे। और ये आशीर्वाद, ये जो शाप है, वो सुनते ही सब बड़े दुखी हो गए। तो अंजनी ने और केसरी ने, उनके माता पिता ने उस शाप मांगा, यानी कि कोई उसमें बदलाव किया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए हम एक ही उस शाप दे सकते हैं। जिस समय इन सारे वरदानों की और इन सारे दिव्य बलों की, शस्त्र अस्त्र की उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस समय कोई अगर उनको इसकी स्मृति दिलाता है तो उन्हें सब कुछ याद आएगा और वो सारा बल का प्रयोग भी वो कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे शाप से वो सारे बलों को भूल गए, उनका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। लेकिन जिस समय जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता उन्हें महसूस होगी, उस समय किसी के याद दिलाने से ये सर्व बल उन्हें वापस मिलेंगे, सब सिद्धियाँ वापस मिलेंगी और वो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जब सीता की खोज में सब लोग दक्षिण की ओर जा चुके थे, उस ग्रुप में, उस सब समुदाय में हनुमान जी भी थे, और सब लोग वहाँ पर गिनती कर रहे थे कि हम कितने योजन छलांग लगा सकते हैं। तो जांबुवान ने भी बताया मैं 90 योजन लगा सकता हूँ, अंगद ने कहा मैं 60 योजन लगा सकता हूँ, सुग्रीव ने कहा कि मैं 50 योजन लगा सकता हूँ, लेकिन 100 योजन तक छलांग लगाने की क्षमता किसी में नहीं थी। और उस समय हनुमान जी उदास होकर एक कोने में खड़े थे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना बल है नहीं जितने ये बखान कर रहे हैं। उस समय क्योंकि जांबुवान सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे ज्ञानी थे और सब चीज़ का उनको ज्ञान था, हनुमान जी के जन्म से पहले से ही वो विराजमान थे इस विश्व में, तो वो आगे आते हैं और इन्हें उस शाप की भी याद थी। उन्होंने हनुमान जी को स्मरण कराया कि आपके पास ये बल है, आपके पास वो बल है, आपके पास, ऐसे वर्णन करना शुरू किया। तो उसी समय उसका ज्ञान और स्मृति होने के बाद हनुमान जी विराट रूप धारण किए, उन्होंने एक पहाड़ पर चढ़ गए, रुके ही नहीं जब तक उनके वर्णन किए जा रहे थे, उनको जब स्मृति होती गई, वैसे ही विराट रूप धारण करके, भयंकर रूप, अकराल विकराल रूप धारण करके जो उन्होंने छलांग लगाई, तो पहाड़ भी उखड़ गए, पहाड़ के पेड़ पौधे सब उखड़ गए, उनके पीछे अवकाश में भागने लगे। सीधे हनुमान ने छलांग लगाकर फिर वो लंका पहुंच गए। बीच में बहुत सारी लीला हुई, लेकिन वो वरदान उन्होंने फिर आगे सुंदरकांड में उनका वर्णन मिलता है, कैसे सारे वरदानों का, सारे शक्तियों का, सारे बलों का, सिद्धियों का केवल प्रभु रामचंद्र के सेवा में उपयोग किया है। युक्त आहार अभिहारस्य, युक्त वैराग्य, बल होना कोई बुरी बात नहीं है, बल से उद्दंड होना, बल से अहंकार प्राप्त होना, ये विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। तो सर्वश्रेष्ठ अति प्रचंड बल होने पर भी व्यक्ति नम्र हो सकता है, इसका हनुमान जी प्रमाण है। और इतना सारा बल होने के बाद भी नम्रता को बनाए रखना, ये भगवान की, प्रभु की अनन्य कृपा का ही परिणाम है, उदाहरण है। इसके आगे उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया। इंद्रदेव ने वायुदेव को विनती किया कि मेरे पुत्र जो है उनकी सहायता जरूरी है। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, इंद्रपुत्र वाली थे, इंद्रपुत्र वाली ने सुग्रीव को बड़ा त्रास दिया, उसकी पत्नी को छीन लिया, उसके राज्य को छीन लिया और उसको बंदी बनाकर मारपीट की कि सुग्रीव जी भाग गए और किष्किंधा में जाके रुक गए। और वहाँ पर किष्किंधा में बाली ने ऋष्यशृंग मुनि का अपमान किया था, अपराध किया था, उसको शाप मिला था कि दोबारा यहाँ पर आओगे तो मर जाओगे, क्योंकि राक्षसों को मार मार कर वाली वहाँ पर उनके अस्थि पंजर को फेंका करता था, अनु अस्थि पंजरों का एक पहाड़ पैदा हो गया था और बार बार राक्षसों को मारकर उस पहाड़ पर वो अस्थि पंजरों को फेंकता था। तो ऋषि का तप भंग हो गया और वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया कि दोबारा यहाँ पर आओगे या तुम्हारी तरफ से कोई वस्तु यहाँ फेंकी जाएगी तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसलिए उसके बाद वाली वहाँ पर आना बंद कर दिया और वो जगह वाली के भय से मुक्त थी, इसलिए सुग्रीव जी भागकर उस पर्वत पर आकर उन्होंने आश्रय लिया। उस समय वायुदेव को सूर्यदेव ने विनती किया था कि आप मेरे असहाय पुत्र की सहायता अपने पुत्र के द्वारा कीजिए। तो फिर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में रहे, वहाँ पर सुग्रीव की मंत्रणा में रहे, सुग्रीव की सेवा में रहे, सुरक्षा में रहे, और वहाँ जाकर उनका निवास काफ़ी दिन तक चलता रहा। और जब प्रभु रामचंद्र सीता की खोज में ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो पर्वत से देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी वाली जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके सुग्रीव को मारने आ रहा है, धनुष धारण करके, क्योंकि प्रभु राम लक्ष्मण का जो रूप था बड़ा विलक्षण था, सर में जटा धारण की हुई है, वलकल पहने हुए हैं, लेकिन हाथ में धनुष है, क्षत्रिय साधु क्षत्रिय का शरीर है, ब्राह्मण साधु का शरीर नहीं है, ऐसा एक विचित्र विलक्षण स्वरूप था उनका। तो ऊपर से जब पहाड़ से देख रहे कि दो पुरुष आ रहे हैं, मनुष्य धनुषधारी किए हुए हैं, उसमें धनुष का चिन्ह भी लगा हुआ है, बाजुएं बहुत मजबूत है, क्षत्रिय जैसा शक्तिशाली छाती है, चाल क्षत्रियों की है, बड़ा आत्मविश्वास नजर आ रहा है, बल का प्रदर्शन हो रहा है चाल में भी, लेकिन जटा धारण किए हुए हैं और वलकल धारण किए हुए हैं, ये क्या रहस्य है? तो सुग्रीव कहते हैं, डर से कहते हैं, जाओ हनुमान जी इनकी परीक्षा करो, ये कौन है? तो हनुमान जी उस समय ऋषि का रूप धारण करके प्रभु राम और लक्ष्मण को मिलते हैं। इतना सुंदर प्रसंग है रामायण में कि कैसी चतुरता से मधुर वाणी से हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण का पूरा रहस्य जो है वो पता कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि मेरे आराध्य भगवान प्रभु रामचंद्र इस लीला में इस रूप में मेरे सामने आए, तुरंत ऋषि का भेद बदल कर अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रभु आपने आज मुझे दर्शन दिया है, मेरा इतना भाग्य है, इतने अद्भुत तरीके से विलक्षण तरीके से आपने दर्शन दिया है, मैं धन्य हो गया। जिस क्षण के लिए जिस घटना के लिए मैं आज तक आतुर था वो आपकी कृपा से आपने स्वयं आकर उसको पूर्ण कर दिया है। फिर राम लक्ष्मण को अपने मूल स्वरूप में बलवान स्वरूप में कंधे पर बिठा कर हनुमान जी उनको पर्वत के शिखर पर ले जाते हैं और सुग्रीव जी को मिलाते हैं। फिर वहाँ पर वार्तालाप होता है कि कैसे सीता को हरण किया गया है और कैसे किसी राक्षस का वध करने के बाद में उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि आप ऋषिशृंग पर्वत पर जाइए, किष्किंधा क्षेत्र में जाइए, वहाँ सुग्रीव आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे सीता की खोज के लिए। और रामायण की कथा आगे बढ़ती है। फिर हम जानते हैं कि जब हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका में प्रवेश किया, कितने सुंदर सुंदर वर्णन वहाँ पर आते हैं। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण जो है राक्षस बनकर हर प्रकार से उनकी परीक्षा करते हैं। पहले तमोगुण पर्वत के रूप में प्रकट हो जाता है, कहते हैं विश्राम करो आप थके होंगे, लेकिन मुझे विश्राम करने का समय नहीं, इसलिए उसको केवल स्पर्श करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर सुरसा आती है, फिर और एक राक्षस आते हैं। तीनों परीक्षाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुँचते हैं और वहाँ पर जो लंकिनी नाम की स्त्री राक्षसी रक्षा कर रही थी तो उनको एक तमाचा लगाते हैं। और लंकिनी को ये ऐसा भविष्यवाणी की गई थी कि कोई बंदर आकर जब आपको तमाचा लगाएगा उस समय आप समझ लेना कि लंका का विनाश होने का समय बहुत नज़दीक आ गया है। तो एक सामान्य बंदर इतने बल से और आत्मविश्वास के साथ तमाचा लगाता है तब उसको ये समझ में आता है कि लंका का विनाश अभी बहुत निकट है। इसके आगे की कथा अगली कड़ी में बताएंगे। हरे कृष्ण।